ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंद पंचम अध्याय। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। श्लोक संख्या 36। श्री दक्ष उवाच अहो असाधु साधूनां अहो असाधु साधूनां साधु लिंगेन नास्त्वयाम् साधु लिंगेन नास्त्वयाम् असाध्व कार्यर्भकाणाम् असाध्व कार्यर्भकाणाम् भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। शब्दानुवाद। श्री दक्ष उवाच। प्रजापति दक्ष ने कहा, अहो असाधो, हे अत्यंत बेईमान अभक्त, असाधुनाम भक्तों तथा महामुनियों के समाज का, साधुलिंगे नाम संत पुरुषों का वेश धारण किए, नहम हमको त्वया तुम्हारे द्वारा असाधु वेईमानी अकारी की गई है, अर्भकाणाम अनुभवहीन बेचार बालकों का, भिक्षुर मार्गः भिक्षारी बा भिक्षु का सन्यासी का मार्ग, प्रदर्शितः दिखाया गया। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत नहीं हो। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को सन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। आप लोग अनुवाद दोहराएंगे। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत हो ही नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूं, किंतु मैं संत पुरुष हूं। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। भावार्थ बहुत लंबा है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासीर अल्पछिद्र सर्वलोके गाय, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला द्वादश अध्याय और 51वां श्लोक। समाज में अनेक सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मिलेंगे, किंतु यदि वे सब अपने कर्तव्यों के अनुसार उचित ढंग से रहे तो उन्हें साधु समझा जाता है। प्रजापति दक्ष निश्चय ही साधु थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए थे, तो भी उन्होंने त्रुटि निकालने की मनोवृत्ति थी। उन्होंने अनुचित तौर पर सोचा कि नारद मुनि असाध हुए, क्योंकि नारद ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। दक्ष ने अपने पुत्रों को नारायण सर के पास तपस्या करने के लिए इस अभिलाषा से भेजा था कि वे ज्ञान से युक्त पूर्णतया गृहस्थ बन सकें, किंतु नारद मुनि ने तपस्या में उनके अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दिया। यही नारद मुनि तथा उनके अनुयायियों का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे सबको इस जगत का परित्याग करने और भगवत धाम लौटने का मार्ग दिखलाएं। किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ दक्ष ने नारद पर असाधु होने का दोषारोपण किया। इस संदर्भ में भिक्षोर मार्गः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। सन्यासी को त्रिदंडी साधु कहा जाता है, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वह गृहस्थों के घर से भिक्षा मांगे और गृहस्थों को आध्यात्मिक उपदेश दें। सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति है, किंतु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ चार आश्रम के अनुसार अपनी जीविका चला सकता है। ब्राह्मण गृहस्थ विद्वान बनकर तथा समाज सामान्य लोगों को भगवान की पूजा करने की विधि बताकर जीविका अर्जित कर सकता है। वह स्वयं पूजा का कार्य कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही अर्चा विग्रह पूजा में लगें, और लोग अर्चा विग्रह पर जो भी प्रसाद भेंट करें उसे वे ग्रहण करें। यद्यपि कभी कभी ब्राह्मण दान ले सकता है, किंतु वह निजी भरण पोषण के लिए नहीं, अपितु अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए होता है। इस तरह ब्राह्मण अपने भावी इस्तेमाल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता। इस तरह क्षत्रिय नागरिकों से कर वसूल कर सकते हैं और उन्हें नागरिकों को रक्षा करनी चाहिए, विधि विधान को लागू करना चाहिए और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। वैश्यों को कृषि तथा गोरक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा शूद्रों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा करने अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मण बने बिना कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सन्यासी तथा ब्रह्मचारी द्वार द्वार जाकर भिक्ष मांग सकते हैं, किंतु गृहस्थ नहीं। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि की निंदा की, क्योंकि द्वार द्वार भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी नारद ने दक्ष के उन पुत्रों को सन्यासी बना दिया था जो गृहस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। दक्ष नारद पर अत्यधिक क्रुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। दक्ष के मतानुसार नारद मुनि ने दक्ष के अनुभवहीन पुत्रों को गुमराह किया था। असाध्वर्भ कारणम, दक्ष अपने पुत्रों को अबोध बालक मानता था जिन्हें नारद ने संन्यास आश्रम दिखलाकर गुमराह बनाया। इस सब बातों के कारण प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर दोषारोपण किया कि वे असाधु थे और उन्हें साधु का वेश धारण नहीं करना चाहिए था। कभी कभी संत पुरुष को गृहस्थों द्वारा गलत समझा लिया जाता है, विशेषतया जब वह गृहस्थों के जुआ पुत्रों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने का आदेश देता है। सामान्यतया एक गृहस्थ सोचता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वह संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी देखी जाती है, क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं हम गृहस्थ जीवन की अनुमति नहीं देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को अनेक बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है जबकि इतने निषेध लगे हुए हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ये चार निषेध कार्य एक तरह से आधुनिक जनसमूह के प्राणाधार हैं। इसलिए माता पिता सभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं। जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण कर दिया, भले ही माता पिता हम पर रुष्ट हों किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है क्योंकि हम नारद मुनि के शिष्य परंपरा में है। गृहस्थ जीवन में लिप्त होने वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि वो किस तरह कृष्ण भावनामृत में साधु बनने मात्र के लिए ही कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है। जो काम भोग के लिए छूट है वे यह नहीं जानते हैं कि गृहस्थ को मिले यौन जीवन के छूट तब तक नियमित नहीं की जा सकती जब तक वह साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता का आदेश है कि 50 वर्ष के आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दें, वह अनिवार्य है। किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है, अतः गृहस्थ लोग मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे ही मामले में नारद मुनि के शिष्य तरुण पीढ़ी के सभी सदस्यों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तुरंत शरीक होने की सलाह देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जयतां स्वरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिहि मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधा मदन मोहनौ दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्ध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्ये वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि श्री गोपाल चूड़ामणि बर्हा पीडं नटवर वपुं कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः प्राविशद् गीतकीर्तिः मुखम करति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। श्री दक्ष उवाच अहो असाधु साधूनां साधु लिंगेन नास्त्वया असाध्वर्भकानां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। प्रजापति दक्ष ने कहा हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुषों का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत नहीं, संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। अपने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। तो दक्ष प्रजापति के अब तक 11,000 पुत्रों को देवर्षि नारद ने सन्यासी बना दिया है। प्रथम जो जत्थे थे वो 10,000 थे, तो उन्होंने किस प्रकार एक सुस्थ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें एवं प्रजा वृद्धि करें, इस उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को पश्चिम दिशा में जहाँ सिंधु नदी समुद्र में मिलता है वहाँ पर नारायण सरस सर नामक एक पुष्करिणी है, तो वो अत्यंत पवित्र पुष्करिणी, उसी में ही स्नान करके संध्या वंदन आदि करके वो तपस्या करने के पश्चात घर में वापस आएंगे एवं पिता दक्ष का आज्ञा का पालन पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर ब्रह्मा जी का जो प्रतिज्ञा है प्रजा सृष्टि करनी है तो उस आदेश को पालन करेंगे। किंतु विडंबना यह है कि देवर्षि नारद उन्होंने ये सु अवसर ढूंढा, उन्होंने देखा कि और इतने बढ़िया सुयोग हमको मिल नहीं सकते, एक साथ में 10,000 बालकों को अभी संन्यास बनाऊंगा, क्योंकि नारद मुनि ये है सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये देवताओं के द्वारा मान्यता प्राप्त ऋषि भी है और उन्होंने जगत का गुरु मान रखा है और वही है वास्तव में। तो न उन्होंने एक कहावत है ना, अंग्रेज में कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, वो लोहे को जब वो तप्त होता है उस समय उसको पीटना चाहिए, जिस प्रकार उसको आकार देना है तो उस प्रकार आकार दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नारद जी ने देखा कि नारायण सरो में ये 10,000 शिष्य संतान दक्ष के अभी पिता का आज्ञा के पालन पूर्वक जो तपस्या कर रहे हैं उसके द्वारा उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, तो यही उत्तम समय है उनको भगवत मार्ग का दर्शन करा करके तो उनको ही शिष्य बनाना है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने उनसे 10 प्रश्न पूछे, करे रे बेटो देखो तुम लोग इतना पानी में जाकर तपस्या कर रहे हो किस लिए, ना पिताजी का आज्ञा है हम तपस्या करके अंधकरण शुद्ध करेंगे और एक सुस्थ गृहस्थ में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके हमें प्रजा सृष्टि करेंगे, संसार में प्रजा का आवश्यकता है तो इसीलिए हम लोग तपस्या कर रहे हैं। बोले कि अरे तुम लोग अज्ञानी है, तुम लोग जानते नहीं है जीवन का क्या लक्ष्य है। ऐसे ही प्रजा सृष्टि करना तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो उन्होंने एक एलिगोरी, एक कहानी बताया। कहानी के माध्यम से उनको इशारा कर दिया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ऐसे ही आहार निद्रा भय मैथुन में बिताना नहीं चाहिए। तो उन्होंने 10 प्रश्न पूछे, आप लोग सब याद किए होंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो उन्होंने नारद जी का आशय समझ गए, 10,000 शिष्यों ने नारद जी का आशय समझकर नारद जी को अपना गुरु मान लिए। और नारद जी तो यही अवसर ढूंढ रहे थे, तो उन्हें बोल के जाओ अभी आप लोग भगवान विष्णु के लिए तपस्या करो और अपने जीवन सार्थक बनायो। ये गृहस्थ आश्रम में ये कीचड़ है और उसका अंदर प्रवेश करोगे तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाओगे। कोई अब तक संसार में सुखी नहीं है, सभी संसार में दुखी है। तो इसलिए संसार का ये जो आपका पिताजी का आज्ञा है प्रजा वृद्धि कर, प्रजा सृष्टि करनी है, तो वो सब छोड़ दो, वो सब बेकार काम है, तुम लोग के लिए नहीं है वो। तो उन्होंने उचित समझा नारद जी का बात को, तो उन्होंने नारद जी का बात सुन ली, तो उन्होंने चल दिए, संन्यास हो गए। भगवान के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। तो जब सूचना मिली कि दक्ष के पुत्र 10,000 पुत्र ये सब सन्यासी हो गए, और इनको सन्यासी बनाए कौन, न देवर्षि नारद, तो प्रजापति दक्ष ने नारद जी के इस कार्य में बहुत दुखी हुए और क्रुद्ध भी हुए। लेकिन वो संभल गए, तो उस समय उनका पिता ब्रह्मा जी आकर उनको सांत्वना दिए, ठहरो फिर दोबारा अपने जो जो भी हो गया छोड़ो उस बात को, अब फिर दोबारा प्रजा सृष्टि करो। फिर उन्होंने दूसरे जत्थे 1,000 संख्यक फिर संतान उत्पन्न किए, फिर वही बात उनको भेज दिए, जाओ वही नारायण स्थल पश्चिम दिशा में सिंधु नदी का संगम स्थल में नारायण स्थल में तुम स्नान पूर्वक वहीं पे तपस्या करो। तो फिर उन्होंने वही काम किया। उन्होंने नारद जी ने देखा कि फिर दोबारा और 1,000 मिल गए हमको, बढ़िया बढ़िया सुअवसर, हमको और घूमना नहीं पड़ता है, एकट ही हमको 11,000 बच्चों को हम सन्यासी बना देंगे। तो उस अवसर को प्राप्त होकर नारद जी ने उनके पास गए और उन्होंने जाकर बोले कि फिर उसी प्रकार पूर्व रीतिया। तो उन्होंने बेटे देखो किस लिए तुम लोग तपस्या कर रहे हो, तुम लोगों का जो पूर्वज जो अग्रज 10,000 जो हरियाश्वत थे तो उन्होंने सन्यास ले लिया, तुम लोग जीवन का कुछ मूल्य जानते हो। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम लोग बड़े अच्छे आदमी हो क्योंकि अच्छे खानदान के है, क्योंकि ब्रह्मा जी के परंपरा में उनके ही प्रपौत्र है तो अच्छे हैं। देखो तुम लोगों का अग्रजों का पालन मार्ग अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने बताया क्यों, फिर उनको सुनाया वही जो कहानी वो 10,000 शिष्यों को सिखाए थे, तो वही। तो फिर उन्होंने भी उनका नारद जी का बात को मान ली, उचित समझे, तो उन्होंने फिर वहीं से संन्यास लेकर फिर चल दिए। अब की बार जब सूचना मिली प्रजापति दक्ष ने क्रुद्ध थे ही, अब गुस्सा में पूरा एकदम रक्त चावल चबाने लगे। अब नारद को पूरा अनशन गाली बकने लगे। अभी वही है, कहते हैं कि अहो असाधु, अरे नारद तुम कितने बड़े असाधु हो, लेकिन वेश तो धारण करते हो साधु का, ये ढूंग रचना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि साधु लिंगे न स्तोया, तुम्हारे द्वारा ये असाधु वेश धारण करी न अस्माको, हमारे ये सारे 11,000 पुत्रों को तुमने भिखारी बना दिया। देखो दक्ष जी का दृष्टि में 11,000 पुत्र उनका भिखारी हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का खानदान है ना, बड़े आदमी है, तो सोचते हैं कि हम जैसे ऐसे ही है, अरे भीख मांग कर जीवन धारण करना ये कोई जीवन है, ये कोई जीविका है, ये सो भिखारी नारद जैसे ऐसे ही भिखारियों के लिए है, तुम लोग बड़ा असाधु हो ना? कार्य तो करते हो असाधु पुरुष का और वेश धारण करते हो साधु पुरुषों का, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुमने ही हमारे 11,000 पुत्रों को भिक्षुक बना दिया, सन्यास का मार्ग प्रदर्शन कर दिया, करा दिया हमने। इस प्रकार जब उन्होंने नारद जी को गालियां बकने लगे, फिर इतना नहीं आगे भी कहेंगे अगला श्लोक में। तो ये है आज का श्लोक का अर्थ, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत कुछ ही कहे, बड़ी लंबी लंबे तात्पर्य हैं। तो एक शुरुआत से प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 12वां अध्याय का 51 प्यार का उद्धृत करी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोक गाय, है ना, इसका ऊपर पैर है, कोई बोल सकते हैं सन्यास नहीं, शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जेन नलुकाय, शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु ये नलुकाय, सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोके गाय। देखो बढ़िया दृष्टांत देकर प्रभुपाद जी ने कहा, देखो जब सफेद वस्त्र होते हैं ना, जैसे पहने हैं प्रभु जी लोग, तो सफेद वस्त्र होते हैं, तो अगर उसमें एक छोटी सी काला का धब्बा लग जाए तो वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, अगर और दूसरे रंग बिरंग का हो उतने सुस्पष्ट प्रतीत नहीं होगा। तो उस प्रकार सन्यासी का चरित्र ऐसे ही होता है, कैसे ना, जैसे शुक्ल वस्त्र बिल्कुल साफ परिष्कार, उसी प्रकार सन्यासी बहुत एक बीता नापते हैं, हाथ मापते हैं और एक बीता चलते हैं, आगे पीछे बहुत सोचते हैं क्या करना क्या नहीं करना, ये सब सन्यास का धर्म है। ये प्रसंग ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का, जब राजा प्रताप रुद्र, पुरी के राजा प्रताप रुद्र, तो खबर मिला कि महाप्रभु दाक्षिणात्य परिभ्रमण करी फिर जगन्नाथपुरी में वापस आ गए, तो उन्होंने राजा प्रताप रुद्र उस समय कहाँ कटक में निवास करते थे, पुरी से 60-70 किलोमीटर दूर कटक में उनका राजधानी थी, तो वहाँ निवास करते थे, तो वहाँ से उन्होंने पत्र लिखा, किसको उन्होंने खत लिखा, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि उस समय तात्कालिक पुरी श्री मंदिर का अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने खत लिखी, उनको सूचना दी कि भट्टाचार्य जी, मैंने सुना कि महाप्रभु अब श्री क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं, मैं मिलना चाहता हूं उनसे, तो कृपा करके महाप्रभु से आप निवेदन कीजिए कि मैं उनसे मिलूंगा। तो भट्टाचार्य राजा है, तो राजा ये है जगन्नाथ जी का चलंती प्रतिमा, तो बहुत मान्यगण्य व्यक्ति है, तो राजा कहते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य सुजग अवसर लेकर उन्होंने महाप्रभु जी के पास गए और उन्होंने अपना जो अभिलाषा है, मैं शॉर्टकट में कह रहा हूँ, समय हो गए, शॉर्टकट में कह रहा हूँ कि जब उन्होंने अपना अभिलाषा बताया कि ऐसे ही राजा प्रताप रुद्र जो आपके अनन्य भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो तुरंत महाप्रभु भट्टाचार्य को बोले कि सार्वभौम, क्या तुम ये सोच रहे हो कि जो तुम कह रहे हो वो उचित कह रहे हो? संसार में सबसे बड़ा विषय ही होता है राजा, तो मैं बिल्कुल उसका विपरीत हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं समस्त गृह परिवार संसार को परित्याग किया हूँ, तो विषय से मिलना मेरा उचित समझ रहे हैं अब? आप यही कहना चाहते हैं ना, मैं कटक जाकर राजा से मिलूं? अगर ऐसे ही आपका अभिलाषा है तो मैं श्री क्षेत्र छोड़कर चले जाता हूँ। तो भट्टाचार्य बोले, प्रभु ऐसी बात नहीं, आप रहिए। नहीं, फिर ये बात फिर प्रताप रुद्र राजा के पास पहुंचा, फिर उन्होंने दोबारा फिर पत्र लिखे कि आप इस बार मेरे लिए सभी मिलकर, आप अकेले नहीं, नित्यानंद प्रभु से लेकर जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं सभी लोग जाकर मेरे लिए अपील कीजिए कि अगर महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं भिखारी हो जाऊंगा। अर्थात कहते हैं कान फोड़ा, मतलब उस समय जोगी होते हैं ना, जब कान में फोड़कर कुंडल धारण करते हैं तो जोगी हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं अभी राज्य शासन सब छोड़कर मैं योगी हो जाऊंगा। ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने सब मिलकर नित्यानंद प्रभु को सामने करके जाकर उन्होंने महाप्रभु से मिले। अब महाप्रभु से बोले कैसे, किसी ना किसी बहाने से उस पॉइंट को आने के लिए तो ऐसे ही महाप्रभु से बात कर रहे थे। महाप्रभु अंतर्यामी, सभी का आशय जानते हैं, तो उन्होंने बोले कि अरे क्या आप लोग बता रहे हैं, कुछ आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप घुमा फेरा कर क्यों बोलते हैं, सीधा सीधा बोलना, बोलो ना, क्या चाहते हो आप बोलने के लिए? तो नित्यानंद प्रभु भरोसा रखकर उन्होंने बोले, प्रभु माफ कीजिए, अगर आप असंतुष्ट ना हो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। तो बोलो ना, ऐसे ही ऐसे आपका जो अनन्य भक्त है, श्री जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त प्रताप रुद्र, वो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप पहली बार जैसे मना कर दिए, अगर ऐसे ही करेंगे तो वो कहते हैं कि मैं योगी हो जाऊंगा, तो क्या किया जाए? तो उसी समय तो महाप्रभु उन बोले कि अच्छा, अगर आप लोग सभी का यही मत है और मेरे पास दामोदर भी बैठा है, ये तो न जाने ये जीरा से सिरा निकलते हैं, ये कुछ ना कुछ मुझे तो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बहुत सोच समझ कर। वास्तव में स्वरूप दामोदर, जो कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि कौन वो थे, ललिता देवी, तो उन्होंने भगवान का चरित्र में कलंक न लगे, वो सतत सतत जागृत थे, तो इसलिए महाप्रभु को आसानी से वो किसी काम में वो आदेश नहीं देते, बहुत सोच समझकर फिर आज्ञा देते हैं। तो अगर आप लोग और दामोदर अगर आज्ञा दे तो मिलूंगा मैं, जो भी होगा, लोक, मैं तो सन्यासी हूँ, लोक धर्म और वेद धर्म सबको मैं परित्याग करके आप लोगों का आदेश पालन करूंगा, जो होगा फिर देखा जाएंगे। तो फिर उन्होंने इस प्रकार परोक्ष में इनकार कर दिए महाप्रभु ने नहीं देखा। फिर जब रामानंद राय आए, वो थे मंत्री थे, तो जब रामानंद राय आए तो उनको ये सभी मिलकर फिर बताए, बोले कि राय जी आप महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है और नजदीक व्यक्ति है, तो आप जरा बतलाइए राजा प्रताप रुद्र की ऐसे ही दशा है तो कैसे क्या किया जाए। तो रामानंद राय जाकर महाप्रभु से बोले, प्रभु ऐसे ही कृपा करिए, तो आप स्वतंत्र ईश्वर है, आप किसके बस में है, लोग क्या कहेंगे वो कौन, आप क्यों सुनते हैं, आपका ऊपर कोई अंकुश नहीं है, आप स्वराट है, आप किसके अधीन नहीं है, आप स्वतंत्र ईश्वर है, तो आप किसके बात में आप क्यों इतना चिंताग्रस्त है। तो उन्होंने जब बताए तो रामानंद राय से उन्होंने बताया कि देखो राय ऐसे ही है, संन्यास का धर्म ऐसे ही होता है जैसे शुक्ल वस्त्र, और मैं सन्यासी हूं और मेरे ऊपर लांछन न आवे, अगर आप लोग मेरे प्रिय हैं तो फिर ठीक है, मैं विषय से तो नहीं मिलूंगा राजा से, लेकिन राजा के प्रति महाप्रभु का अनन्य स्नेह है, लेकिन बाहर तो लोग व्यवहार में तो उतारेंगे ना, नहीं तो हम लोग को ऐसे ही करेंगे, विषय जनों के साथ मिलेंगे ये करेंगे। तो उन्होंने शिक्षा देने के लिए घोर विरोध किए, लेकिन रामानंद राय वो भी विशाखा है, वो भी चतुरता में कम नहीं है, महाप्रभु को भूला भटका कर फिर ले आए, तो महाप्रभु राजी हुए। तो बोले कि ठीक है आप मेरे बहिर्वास को लेकर उनको दे दो, और उनको कुछ आश्वासन आ जाएगा और वो फिर ही धैर्य धारण कर रहेंगे कि हाँ कभी ना कभी प्रभु मिलेंगे, तो उन्होंने दे दिए। तो राजा खुश हुए, फिर दोबारा फिर उन्होंने बोले कि फिर राजा प्रतापरुद्र आपसे मिलना चाहते हैं ना, नहीं नहीं उनसे तो नहीं मिल सकता है, उनका जो लड़का है राजा के जो पुत्र है पुरुषोत्तम देव वो अभी किशोर है, तो उनको बुलाओ। तो जब महाप्रभु इस प्रकार कहे तुरंत राजा के पास खबर पहुंचा और तुरंत उनको पीताम्बर और राज युवराज वेश में उन्होंने महाप्रभु का सामने, किशोर देखने में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही स्वरूप सांवला वर्ण के थे और किशोर अवस्था थे, महाप्रभु जब देखे पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम देव जी को, तो उनका भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आया, तुरंत उनको आलिंगन किए, और वो भी जो प्रताप रुद्र जी के जो पुत्र वो भी युवराज, किशोर युवराज नहीं अभी किशोर है, वो भी भाव विभल में प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे, वो भी कृष्ण कृष्ण ऐसे ही करने लगे, फिर उनको समझा बुझा कर फिर घर में ले गए। राजा के पास एक खबर पहुंचा, राजा भी देखे कि पुत्र का ये सब परिवर्तन देखकर वो आश्चर्य हो गए, और अपने पुत्र को उन्होंने भी आलिंगन किया, गले लगाया, जब उन्होंने गले लगाया उनका भी प्रेम में वो भी विभोर हो गए। तो इस प्रकार तो उन्होंने राजा प्रताप रुद्र से इस प्रकार मिले उन्होंने। तो यही बात प्रभुपाद जी ने ये करते हैं कि नारद जी ये है जगत का गुरु है, उनका चरित्र कलंक रहित है, और ये दक्ष प्रजापति ने अपना गृहस्थ चिंताधारा के अनुरूप ही वो विवेचना करते हैं कि हमारे पुत्र ये तो संता हमारे जो 11,000 पुत्र हैं ये तो घर संसार करके प्रजा सृष्टि करना चाहिए था, उनको ये भिखारी बना दिए, लेकिन नारद जी का दृष्टि में उन्होंने ये सामान्य ये पृथ्वी को क्या राज्य करेंगे, वो तो पूरा पूरा सृष्टि का मालिक है। जब सन्यासी हो जाते हैं ना तो क्या होता है, सन्यासी वही होता है जो भगवत स्वरूप हो जाता है, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवे, तो संपूर्ण विश्व का सृष्टि का उपभोक्ता होता है। क्योंकि सामान्य ये त्याग करने से उनको हिचकिचा नहीं है। नारद यही बात मन में रखकर उनको सब संन्यास बना दिए। यही बात भी भगवान ऋषभ देव अपना पुत्रों से कहा, नायोम देहो देह भजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बीड़ भुजाम ये पुत्र तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ये ब्रह्म सुख ही अनंत है। ये जो संसारिक सुख है ना, ये कहते हैं बीड़ भुजाम, शुकर कुकर के जो भोग है इसी प्रकार ये संसार भोग ऐसे ही है। लेकिन तपस्या करो, तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। क्यों ना, ये न सत्वम शुद्धित, सत्व माने अंतःकरण, जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और जिस शुद्ध अंतःकरण में तुम वही ब्रह्म सुख को अनुभव करोगे। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। इस प्रकार ऋषभदेव ने अपना जो 99 पुत्र थे, और सौमा जो पहला है भरत है, तो भरत सर्व गुण संपन्न थे, तो इसलिए उन्होंने अपने 99 पुत्रों को बोलते हैं कि तुम्हारे अग्रज भरत का पदांक का अनुसरण करो, तुम्हारा सद्गति होगी। तो इस प्रकार जिस प्रकार नारद जी ने जो कार्य किए हैं, तो संसार बंधन में जो पड़े हुए जीवों को देखकर उनका मन में बहुत पीड़ा है। एक संत कवि ने गाया है, कहते हैं प्राणी, ये उड़िया भाषा में है, प्राणी का आरत दुख अप्रमित देखु देखु के बाद सहे सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था हो जगत उद्धार है हो। जो नारद जी ने कहा है किया है उन्हीं के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है। कहते हैं कि संसार में प्राणियों का जो आर्त है ना, मेरे से देखा नहीं जाता है। प्राणी का आरत देख दुख अप्रमित प्रचुर परिमाण में ये सब दुख कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन मेरे से ये नहीं सहन किया जाता है। कहते हैं कि अगर मुझे नरक जाना पड़े वो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही नारद जी। इस प्रकार दक्ष का जो फटकार और जो गाली गुलज, उसके प्रति वो भ्रूक्षेप नहीं किए, उसको खातिर नहीं किए, क्योंकि उनका चिंताधारा बहुत उदार है। वो तो जगत का वो कल्याण करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको इस प्रकार उपदेश देते हैं। बहुत समय हो गए, तो इस प्रकार दक्ष ने, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सुस्पष्ट सब व्याख्या कर दिया, तो उसको थोड़ा जरा सावधानी से सुन माने पढ़कर उसको विचार करना चाहिए। विचारात जायते बोध, तब वो बोध उत्पन्न होने से संसार में हमार क्या होगा, संसार में दोष बुद्धि आएगा, तो फिर संसार विषय सांसारिक विषयों के प्रति हम लोग इतना प्रलोभित तो नहीं होंगे। अपना जगह में रहें, जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण।